रजनी की शादी थी आज, देव वीणा नहीं आए। हां, देव ने जिद करके अमित को मां के साथ भेज दिया था। अमित और मां को अकेले आए देखकर निर्मला की आंखों की चमक दूर हो गई, लेकिन शादी के वातावरण को बोझिल ना होने देने की सोचकर वह कृष्णा से गले मिली, प्यार से उसे बिठाया और धीमे से बोली, बहन जी, वीणा को भी साथ ले आते तो कितना अच्छा होता। कृष्णा जैसे तैयार थी बोली, मैंने तो बहुत कहा, देव ने भी जोर दिया, लेकिन वह तो ना जाने किस मिट्टी की बनी है, अपने निर्णय से टलती नहीं। यही बोली, देव के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, रजनी शादी के बाद मुझे दिल्ली मिलकर ही जाएगी। इतना ही सुनकर निर्मला की आंखें भर आई, रुक ना सकी अविरल धारा और बोली, कितने अरमानों से ब्याह किया था बहन जी हमने, क्या मुसीबत लिखी थी हमारी बेटी के भाग्य में। तब कृष्णा ने अपनी कही, हमने भी नहीं सोचा था बहन जी कि ऐसा भी हो सकता है, मेरा जवान बेटा शादी के बाद कुछ दिन ही खुशी मना सका। कृष्णा की बात सुनकर ठेस लगी निर्मला के मन को, समझदार थी, काबू पा लिया अपने भावों पर, लेकिन सुनीता जो वहीं आ चुकी थी रोक नहीं पाई कृष्णा के शब्द सुनकर अपने आवेश को, बोली, ऐसा क्यों कहती हैं आंटी कि शादी के बाद कुछ हुआ, शादी से पहले क्या था देव को, आप लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया, सब छिपा लिया, आज आप कह रही हैं कि शादी के बाद देव बिस्तर पर पड़ गया, जैसे दोष उनका नहीं, उनकी गंदी बीमारी का नहीं, सिर्फ वीणा का है। आवेश में रोने लगी सुनीता, लेकिन चुप नहीं हुई, मेरी प्यारी सी बहन की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या सुख पाया उसने, क्या सुख दिया उसे देव ने, नर्स बनकर रह गई है नर्स, पैसे वाले थे आप लोग तो किसी नर्स को ही रख लेते, क्या पड़ी थी देव को बिहाने की। सुनीता की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए, कृष्णा व निर्मला दोनों की आंखें नम हो गई। सुनीता कुछ और भी बोलती कि प्रेम तेजी से भीतर आ गया, छोटा था लेकिन रोब था पूरा सब पर। सुनीता के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, क्या बोले जा रही हो दीदी, कुछ तो सोचो, घर मेहमानों से भरा है, सब क्या कहेंगे, और आंटी को कुछ कहने का तुम्हारा मतलब भी नहीं, मैं जानता हूं उनका कोई दोष नहीं है। तब वह कृष्णा के आमुख होकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, आंटी, मैं दीदी की तरफ से माफी मांगता हूं, आप उनकी बातों को मन से निकाल दें, वे आवेश में ना जाने क्या क्या बोल गई, और यह कहकर वह कृष्णा के पैरों पर झुक गया। तब कृष्णा प्रेम को गले लगाते बोली, मेरे मन में कुछ होता तो मैं यहां आती भला, दोष मेरा है या मेरे किसी और का, यह सोचने की शक्ति नहीं है मेरे पास, मेरी आंखों के सामने मेरा जवान बेटा तिल तिल कर सांस ले रहा है, मैं कैसे सह रही हूं इस गम को, यह मेरे मन से पूछो। वह रोने लगी थी, मेरी बहू मेरे बेटे की सेवा कर रही है, इसमें मेरी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं, मैं उसके मंगल की तो कामना करती हूं हरदम। तब तक निर्मला भी संभल चुकी थी, बोली, हमसे गलती हो गई बहन जी, जो यह बात चल निकली, अब आप सब भूलकर आराम कीजिए, शाम को शादी है, मेरी आपसे प्रार्थना है आप प्रसन्न मन से रजनी को आशीर्वाद दीजिए। वातावरण बोझिल हुआ देखकर अमित जड़ हो गया था, कुछ बोलते नहीं बन रहा था उससे। प्रेम ने भी महसूस किया और अमित से बोला, और अमित कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए बोला, मेरे योग्य कुछ काम हो तो बताओ। काम सब हो गया, आओ तुम्हें अपने मित्रों से मिलवाऊं। और उसकी बांह थामे प्रेम कमरे से बाहर निकलते हुए निर्मला से बोला, अम्मा जी अब आप आंटी को रजनी के पास ले जाओ और इनके जलपान का प्रबंध करो। उसके शब्दों में मूक आदेश था, प्यार भरा। अमित की आंखें शादी की रौनक में प्रिया को खोज रही थी। प्रतीक्षा अधिक ना करनी पड़ी उसे, प्रिया दिख गई उसे, अपनी एक सखी के साथ खड़ी थी। अमित की ओर देखकर वह मुस्कुराई। अमित के कदम स्वतः उसकी ओर बढ़ गए। हेलो प्रिया, कैसी हो? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी मुस्कुराती हुई देखने लगी उसकी ओर। मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? तब प्रिया ने उसका परिचय अपनी सखी से कराया। सुलोचना नाम था उसका। फिर अमित से पूछा उसने, वीणा दीदी कैसी हैं? आप उन्हें भी ले आते? अमित का स्वर दब गया। मैंने तो कहा था उनसे, लेकिन बात अधूरी ही छोड़ दी उसने। और देव जीजा जी? तब प्रिया ने बात समझकर आगे बढ़ाई। बस उन्हीं की चिंता है, बहुत मन है उन्हें देखने का। अगर कॉलेज से छुट्टी हो तो मेरे साथ चलना, मिल लेना उनसे, दीदी से। अमित ने उसे निमंत्रण दिया। तभी किसी ने सुलोचना को पुकारा, वह उनके निकट से हट गई। दोनों अकेले रह गए। मम्मी नहीं जाने देंगी अभी, प्रिया उदास सी होती दिखाई दी अमित को। अमित समझा, बात का रुख बदला उसने। भाभी बहुत तारीफ करती है आपकी। अच्छा, मुझे प्यार भी सबसे अधिक करती हैं। प्रिया भी मुस्कुराई, साथ ही बोली, वैसे आपकी बातें हर पत्र में जरूर लिखती हैं, बहुत प्रभावित हैं आपसे। अच्छा, मुझे तो कभी नहीं बताया, अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हुआ अमित। कुछ और बातें की उन्होंने और अवसर पाकर अमित ने कहा प्रिया से, मैं आपके लिए एक चीज लाया हूं, पर्सनल। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? आश्चर्यचकित हुई प्रिया, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हो उठी, क्योंकि वह और किसी को नहीं दे सकता। इतना कहकर अमित के कान लाल हो गए थे। ऐसा भी क्या है, देखूं जरा? कौतूहलवश पूछा प्रिया ने। कोई चीज नहीं है, कुछ और है, चंद कागज के टुकड़े, पहेली बुझाई अमित ने। पहली ही मुलाकात में इतनी जल्दी खुलने से डर भी रहा था वह। कागज के टुकड़े, उन पर कुछ तो होगा? प्रिया बिल्कुल भोलेपन से पूछ रही थी। कल सुबह दे दूंगा, आराम से देख लेना, काफी समय लगेगा समझने में। अमित मुस्कुरा रहा था। ऐसा भी क्या है, अभी दिखाइए, प्रिया की जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। कुछ समझ रही थी, कुछ समझने की चेष्टा कर रही थी, मन ही मन खुश भी हो रही थी। जरूर दूंगा, हाँ एक वायदा करना होगा, अच्छा ना लगे तो चुपचाप फेंक देना, किसी को बताना नहीं। वायदा तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मैं कोई बात किसी से छिपाती नहीं। प्रिया तो मुस्कुरा रही थी। आपने मेरे जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजा था, मैंने तो सबको पढ़ाया। और हाँ, जैसे उसे याद आया, उसका शुक्रिया, वह मैंने संभाल कर रखा है अभी तक। अच्छा, अमित यही सुनना चाहता था। बस फिर आशा है आप उसे भी संभाल कर रखेंगी। फिर स्वयं ही आश्वस्त होकर बोला, चाहो बता देना सबको। बात इतनी ही कर पाए वह। प्रिया रजनी के पास चली गई और अमित एक कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराता हुआ कुछ सोचने लगा। अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि सुलोचना आ गई अमित के पास। एकाएक अमित को विश्वास नहीं हुआ उसकी बात सुनकर। बोली वह, सुना है आप प्रिया के लिए कोई उपहार लाए हैं? अमित सक पका गया एकाएक, बोला, मैं? आपको किसने कह दिया ऐसा? समझा अमित की खिंचाई शुरू हो गई। बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, आप मजाक बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। सुलोचना भी तैयार थी। अमित ने देखा इधर उधर, कोई नहीं सुन रहा था उनकी बातें। मजाक ही तो कर रहा था, देख रहा था कि प्रिया कितना संजीदा होकर लेती है मजाक को। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आपने मजाक में ही उसे जन्मदिन पर कार्ड भेजा था और अब मजाक में ही उपहार दे रहे हैं। सुलोचना ने कहा। तब अमित ने बात बदलने की चेष्टा की, लेकिन कमाल की है प्रिया, एक मिनट में पूरी रिपोर्ट दे दी आपको। अरे, आप क्या समझते हैं, हम सुबह से शाम तक साथ साथ रहते हैं। तब अमित ने हथियार डाल दिए। बोला, दरअसल मैं देखना चाह रहा था, आपके हाव भाव को समझना चाह रहा था, आप तो बड़ी खुश दिल हैं। अब आप मुझ पर डोरे ना डालिए, एक ही बहुत है। एक कौन? वह फिर अनजान बना। लो, अब मुझे खींचने लगे। एक बात ध्यान रखिए, मेरी इजाजत के बिना आपकी दाल नहीं गल सकती, सुलोचना ने कहा। अमित समझ गया, वह अच्छी लड़की है, मन की साफ, जैसी प्रिया की कल्पना की थी उसने बिल्कुल वैसी ही। तब बोला, उसे वह बहुत धीरे से, उपहार कुछ नहीं, बस मैं अपनी भावनाएं समेट कर लाया हूं। सुलोचना भी उसी टोन में बोली, कैसी भावनाएं? तुम्हें मैं दे दूंगा, पहुंचा देना उस तक। अमित ने उत्तर दिया। बात इतनी ही हो पाई उनके बीच, मेहमान आने शुरू हो चुके थे और तब सुलोचना उठकर भीतर चली गई। अमित की डायरी के हर पन्ने पर नाम था प्रिया का। प्रिया के नाम ढेर सी मीठी मीठी प्यारी कल्पनाओं का चित्रण था। डायरी का हर शब्द प्रिया के लिए एक सुखद अनुभूति लिए था। ऐसा लग रहा था प्रिया को कि अमित खड़ा हो जैसे उसके आसपास कहीं और पुकार रहा हो उसे। हर अक्षर प्रिया के लिए था। अब प्रिया को और कुछ याद नहीं था, बस अमित, अमित, उसी का नाम, उसी की बातें, उसी की कल्पना। मां ने सुना, पहले सुनती तब शायद अच्छा लगता, लेकिन अब वह डर गई। नहीं नहीं, पगली ना बनो उसके लिए। एक बहन गई उस घर में, सब कुछ उलट गया, कितना बड़ा धोखा हुआ है। भूल सकती हो क्या वह सब? मां के स्वर में आदेश था अमित को भूल जाने का। नहीं मम्मी, नहीं, उसमें अमित का क्या दोष? तब गीता ने प्रिया का साथ देते हुए कहा, उसका दोष कुछ नहीं, बस केवल इतना है कि वह देव का भाई है, उसी परिवार का है जहां हमारी बेटी दुख भोग रही है, मां ने कहा। लेकिन अमित अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। देव जीजा जी का दोष, उसके परिवार वालों का दोष उस पर मढ़ना अच्छा नहीं। गीता को प्रिया के लिए अमित मन से भाग गया था, वह अपनी बहन की तरफदारी कर रही थी। निर्मला ने तब आदेशात्मक स्वर में बात समाप्त करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, बस जो कह दिया उस पर अमल करो, उसे अपने मन से निकाल दो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गीता ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। निर्मला चली गई। तब गीता बोली, तुम चिंता ना करो, मां मान जाएगी, क्योंकि अमित अच्छा लड़का है। नहीं मानेगी मां, देखती नहीं कितनी कड़वाहट है उनके मन में उसके परिवार वालों के प्रति। प्रिया भावुक हो चली थी। वह अपनी जगह ठीक है, लेकिन समय रहते सब ठीक हो जाएगा। तुम अमित को दो शब्द लिख तो दो। प्रिया की भावनाओं की पूरी पकड़ थी गीता को, छोटी होते हुए भी उसकी परम मित्र थी, जानती थी प्रिया बहुत भावुक है, भावनाओं के आवेश में कुछ भी कर सकती है। अमित जो कभी अजनबी था प्रिया के लिए, आज उसे अपना सबसे प्रिय लग रहा था। उसी को अपने मन की बात लिख सकती थी ऐसा लग रहा था और लिखने बैठ गई। अमित के नाम आए प्रिया के पत्र को देखकर वीणा पल भर में सब समझ गई। एक नहीं, दो नहीं, रोज रोज पत्र आने लगे। अमित भी लिखता होगा, मन में वह खुश हो गई। उसका मन कितना कोमल था, वीणा का हृदय कितना सरल था, मन में कोई गांठ नहीं थी। जानती थी उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे, लेकिन उसे लगा था कितना व्यर्थ दुख है उनका। उसे देव अच्छा लगता था, उसे अमित अपने भाई सा प्रिय था, उसे अपने सभी ससुराल वाले अपने लगते थे। तभी जब उसने देखा अमित व प्रिया एक दूसरे को चाहने लगे हैं, तो वह बहुत खुश हुई। देव से बोली, अमित प्रिया की जोड़ी अच्छी रहेगी, मुझे बहुत सहारा रहेगा प्रिया का। देव तो चाहता था पहले ही दिन से, लेकिन अब स्थिति बदली हुई महसूस हो रही थी। मन से जानता था वीणा के घर वाले रिश्ते को नहीं मानेंगे, इसीलिए अपनी राय देने से कतरा रहा था। चुप रहा वीणा की बात सुनकर, बस मुस्कुरा भर दिया। तब वीणा ही बोली, क्या मैं लिखूं मम्मी को? मम्मी नहीं मानेंगी ऐसा मुझे लगता है, देव ने कही तब अपने दिल की बात। क्यों नहीं मानेंगी, अमित जैसा लड़का कहां मिलेगा? और फिर दोनों एक दूसरे को अब चाहने भी लगे हैं। प्रिया के पत्र अब लगभग रोज आते हैं अमित के नाम, और अमित भी दिन रात उसी को लिखता रहता है। वीणा ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी थी, सबसे ऊपर उसे अब अमित प्रिया का साथ लग रहा था। इतना सब एक साथ वह कैसे कर लेती है, देव सोचकर आश्चर्यचकित था। एक ही घर में एक बहन उसके साथ दुख भोग रही है, और वही बहन अपनी छोटी बहन के लिए उसी घर में सुख देख रही थी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब रिश्ते की बात आएगी सभी ना कर देंगे। सुना नहीं सुनीता किस कदर नाराज है हम सब से, देव ने कहा। सुनीता को समझाया जा सकता है, लेकिन मुझे अपने मम्मी डैडी पर भरोसा है, वे मन में कोई वैर नहीं पाल सकते कभी किसी के लिए। यह ठीक है, उन्हें मेरे प्रति बहुत दुख है, तुम्हारी बीमारी की उन्हें चिंता है, लेकिन प्रिया और अमित के रिश्ते के लिए मेरी तुम्हारी स्थिति को साथ नहीं मिलाएंगे। फिर अमित को मैंने देखा है, समझा है उसे, वे भी उसे अच्छी तरह जानते हैं, उसमें कोई कमी नहीं, प्रिया उसके साथ बहुत सुखी रहेगी। वीणा ने अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए कहा, ठीक है तुम मम्मी को पत्र लिख कर देख लो, मुझे तो वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा। देव ने अपने मन की बात कह दी। मन में एक बात थी उसके कि वीणा को प्रिया का साथ मिल गया तो वह भी खुश रह पाएगी। तब वीणा मां को पत्र लिखने बैठ गई। निर्मला ने पढ़ा वीणा का पत्र। अमित के प्रति वीणा की लिखी बातें पढ़कर उसे अमित पर प्यार आ रहा था, लेकिन कुछ निर्णय करते उसके मन में झिझक हो रही थी। जिस लड़की के लिए उसके मन में उसके ससुराल वालों के प्रति रोष था, वही उन्हीं की प्रशंसा कर रही थी। पन्नालाल घर आए तो उनके सामने उसने वीणा का पत्र रख दिया। पत्र पढ़कर पन्नालाल ने निर्मला से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या कहूं, मुझे तो यह लड़की पगला गई लगती है। अपने दुख में न जाने क्या सुख खोज लिया है उसने कि बात अधूरी रह गई। निर्मला को पन्नालाल ने रोक दिया। उसके दुख में सुख हमें नहीं, उसे भी नहीं। हां, अपना दुख वह किसी से बांटना नहीं चाहती। अपने दुख का दोष वह किसी को नहीं देती और दुख सुख में भेद भी जानती है, तभी तो अमित के लिए इतनी प्रशंसा लिखती है। पन्नालाल के विचार शायद वीणा से मेल खाते थे। सहज भाव से अपनी बात कह गया वह, अमित मुझे भी अच्छा लगता है, प्रिया का मन भी उसी में है, लेकिन दुनिया वाले हंसेंगे हम पर। सच को कौन जानेगा, सब यही कहेंगे, ना जाने किस लालच में एक को पहले ही आग में झोंक दिया, अब दूसरी को भी वहीं डाल रहे हैं। निर्मला ने अपनी बात कही, दुनिया वालों का क्या, दुनिया वाले खड़े तमाशा देखते हैं, कौन किसका साथ देता है, सारी उम्र बीत गई यही देखते हुए। पन्नालाल ने अपनी बात कही, यानी उसे वीणा का प्रस्ताव मंजूर था। बोले जा रहे थे, पहले जो हुआ देखे बिना जल्दी में कर दिया, हम नहीं जानते थे उनको, अब ये लड़का तो देखा भाला है, इसे तो कोई बीमारी नहीं, पढ़ा लिखा अपने पैरों पर खड़ा है, सच कहो तो उसी के बूते पर वीणा की मुझे चिंता नहीं, ऐसा लड़का तो नहीं मिलेगा, फिर कहीं अखबार में छापेंगे, कौन आएगा नहीं पता, बाकी तुम देख लो, पूछ लो सुनीता से पत्र लिखकर। पन्नालाल ने सारी बात एक साथ कह दी। सुनीता की बात तो मुझसे हुई थी, उसे अमित से गिला नहीं, लेकिन उसके परिवार के नाम पर उसे चिढ़ है। निर्मला ने कहा, तब मेरी मानो तो हां कह दो, मुझे मन से अमित बहुत अच्छा लगता है। पन्नालाल ने अमित के स्वभाव को कब परखा था निर्मला नहीं जान सकी। निर्मला की आंखें एकाएक नम हो आई, बोली, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तुम बहुत निडर हो, कल कैसे होगा कुछ नहीं पता। वह आंसू बहाती रही। एक बार पन्नालाल ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे इतना मालूम है कि मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, वीणा को दुख देकर मेरा दिल पत्थर का नहीं, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो हो रहा है उसमें शायद मेरे कर्मों का कोई दोष हो, या फिर उसके भाग्य में यही लिखा हो। अब यदि दूसरी के लिए यही डर मन में पाल लेंगे तो शायद कहीं भी रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी। पन्नालाल यह कहकर दूसरे कमरे में चले गए।